सबसे पहले दक्षिण भारत में कर्नाटक जागता है। बढ़िया नाटककार हैं कर्नाटक के।
रोहिणी का पार्ट जगदम्बा से लागू होता है। रोहिणी का जो पार्ट है वो जगदम्बा को लागू होता है।
इसकी ब्रह्मा बाबा ने रोहिणी की ज्यादा महिमा की। ब्रह्मा बाबा ने रोहिणी को ज्यादा मान वर्तवा दिया। मुरली में रोहिणी का नाम आया क्या?
वार्तालाप में आया बोल रहे।
ब्रह्मा बाबा नाम क्यों ले रहे? क्या किया? तो यज्ञ के आदि में जगदम्बा को मान मर्तबा नहीं दिया क्या ब्रह्मा ने? उसकी वाणी नहीं चलती थी। जगदम्बा कोई माता थी यज्ञ में, उसकी वाणी चलती थी ना, सारा ब्राह्मण परिवार उसके कंट्रोल में था। जब आदि में सारा ब्राह्मण कंट्रोल में था तो अंत में सारा ब्राह्मण परिवार कंट्रोल में नहीं आवेगा? आवेगा। चंद्रवंशी भी कंट्रोल में होंगे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण भी कंट्रोल में होंगे जगदम्बा के, बौद्धी क्रिश्चियन वगैरह वगैरह सारे कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण जगदम्बा के कंट्रोल में रहेंगे। अंत में आज में भी कंट्रोल में थे। छुपा रुस्तम बाद में बोले। जैसे सन 76 में हुआ ऐसे फिर बाद में भी होगा। छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। तो जितने भी देवताएं हैं जानवरियत के स्वभाव वाले भगवान हैं, जानवर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले या देवियां हैं, उनकी सबकी क्या हो जाएगी? डूबी जा हो जाएगी।
क्या हुआ है?
उन पक्षियों का नाम पड़ा क्रौंच पक्षी। करो ऊंच, ऊंच काम करने वाली है। क्या ऊंच काम करती है? जो खारा सागर है उसे सुखाने का प्रयास करती है। क्या उनमें उमंग उत्साह इतना बढ़ जाता है कि संगम युग का जो खास गायन है असंभव को भी संभव करने का। वो उन ज्ञान चिड़ियों ने संभव करके दिखाया, वो कार्य असंभव को भी संभव कर दिया। क्या सारा सागर सुखाई दिया। उन्होंने हिम्मत की और बाप ने सहयोग दिया। सहयोगी के रूप में अगस्त ऋषि को दिखाया गया। उन्होंने सारा सागर उठा के पी लिया। वो अगस्त ऋषि कौन हुआ? राम बाप वाली आत्मा। उसने देखा ये क्रौंच पक्षी सागर को सुखाने में लगे हुए हैं। एक एक बूंद सागर में से उठाते हैं, जमीन में पटक देते हैं, बूंद बूंद करके सुखा रहे हैं। कैसे सूखेगा? उनको रहम आ गया, सारा सागर पी लिया। सागर तो सूख गया। फिर हो अल्ला मचेगा कि नहीं संसार में जीव जंतुओं को? है तो जब हो अल्ला मचा तो उन्होंने सारा सागर का जो जल पिया था वो तो सब बाहर निकाल दिया। कोई भी आदमी मनुष्य आत्मा जो भी जल पीती है, जल तो शुद्ध ही पीती है, फिर जब बाहर निकलता है तो शुद्ध निकलता है या खारा निकलता है? खारा निकलता है। वो आत्मा भी फरुखावादी है, जहां का फरुखावादी नमक नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा ज्ञान सुनाती है जिसके लिए मुरली में बोला है ये ज्ञान बहुत चटपटा अटपटा खटपटा है। ये ज्ञान कैसा है? चटपटा भी है खटपटा। ब्रह्मा भगवान ये कहते अरे अटपटा है अब खटपटा है, झगड़ा कराने वाला है।
वो क्रौंच पक्षी का पार्ट किसका है?
सागर का पार्ट किसका है?
सागर का तो बाप राम बाप,
बाप राम बाप का पार्ट। और राम बाप में इतना देहवान कहां से आ जाता है जो उसको यादगार बकरे का मुंह चढ़ दिया गया? क्या हो जाता है उसको? कौन सुखाता है जो देवानी देवान भर जाता है? भगवान को भी गालियां देने लग पड़ता है, पूरा नास्तिक बन जाता है। वो कौन सुखाता है?
नहीं, वो ये 76 में ही हो गया
ना रे। अभी तो खारापन बाहर निकलना शुरू हुआ है, अभी तो आगे चल करके इतना खारा हो जाएगा ये आत्माओं को सुनना दूभर हो जाएगा।
पापा बच्चे को भी उतना खारा लगेगा?
बच्चे अगर बच्चे होंगे तो नहीं खारा लगेगा, आठ बच्चों को खारा नहीं लगेगा, वो छलते रहेंगे और बाकी सब का मुंह कड़ुआ हो जाएगा। बोल दिया एक की भी नहीं छुपी रहेगी, सबके पार्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं छुपा हुआ रहेगा। अभी भी कोई कोई अनुभव करते हैं, वाणी चलती है भले दूर बैठे हो तो भी सभा के अंदर बहुत तेरे हैं जो जब उस वाणी पर मनन चिंतन मंथन करते हैं तो उनको साबित हो जाता है ये बात उस आत्मा के लिए लागू हो रही है और किसी के लिए लागू नहीं हो रही है। जो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा पब्लिक के बीच में भी पर्सनल बातें कर देते हैं, क्या वो तमिल पर्सनल होता है या पब्लिकली होता है? पर्सनल होता है, लेकिन पब्लिक के बीच में भी पर्सनल पोतामेल प्रत्यक्ष हो जाता है इनडायरेक्टली। ऐसी वाणी आगे चल करके धड़ल्ले से चलेगी, वो डंडे नहीं मारेगा जो स्थूल हड्डियां टूटती हैं। बता तो दिया, एक ड्रापर ले लो, उसमें सरसों का तेल डाल के रखो, जब नींद आती है तो आधा बूंद उंगली में लेके यूं एक आंख में लगा दिया, आधा पौना घंटे तक नींद नहीं आएगी, उड़ जाएगी, फिर नींद तो फिर भी आएगी, फिर जब दोबारा आना शुरू हो तो फिर आधा बूंद लेके दूसरी आंख में लगा दो, फिर आधा पौना घंटा नींद नहीं आई, फिर कोई कहे फिर नींद आने लगती है, तब तक ये आंख ठंडी हो जाएगी, तो उस आंख में फिर लगा दो, ऐसे करते रहो अमृत वेला पूरा हो जाएगा। चार से आठ दिन में अभ्यास जगने का पक्का हो जाएगा।
बाबा
रुको रुको, नीचे कोई कुछ पूछ रहा है, क्या पूछा?
वैश्या और शूद्र का
है,
वैश्या और शूद्र का
हाँ
फर्क क्या?
शूद्र तो स्त्रियां भी होती हैं और शूद्र संप्रदाय पुरुष भी होते हैं, लेकिन वैश्या सिर्फ स्त्री के लिए कहा जाता है, क्या पुरुषों को वैश्या नहीं कहा जाता? वैश्या का अर्थ ही है विष शब्द से बनता है वैश्या, विष की औलाद, विष की रचना, पुरुष को वैश्या नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष जब विकार में जाते हैं तो उनके पेट में यूरिन नहीं जाती है जाति जाति की, लेकिन स्त्री के पेट में व्यभिचारी बनने से जाति जाति के पुरुषों का पेशाब जाता है, यूरिन जाती है। जैसे आज दुनिया में धरणी में यूरिन डाल करके यूरिया डाल करके सारा भोजन विषैला बना दिया, कितना कीड़ा पड़ता है अनाज में, ऐसे ही स्त्री का जो शरीर है वो कीड़ों से भरपूर हो जाता है, खून ही खराब हो जाता है, उस खून से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छे पैदा होंगे या धुंधकारी पैदा होंगे? धुंधकारी पैदा होंगे, इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है कि व्यभिचार से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, सारा कुल ही विशेष बन जाता है। जैसे आज कहने के लिए ब्राह्मण रह गए हैं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्र हो गए। और
जहाँ
जीत वहाँ जन्म, हम जन्म जन्मांतर कर्म करते रहे अलग अलग शरीर धारण करके, शरीर धारण करके हमने अच्छे कर्म किए मान लो, और हमारे साथ किसी ने घटिया कर्म किए, नीच कर्म किए, तो जो नीच कर्म करने वाली आत्माएं हैं वहां जाकर के हमारी आत्मा उनके घर में उनके गर्भ से जन्म लेगी, उन आत्माओं को हमारी चट्टी पेशाब साफ करनी पड़ेगी, हमारी पालना करनी पड़ेगी, परवरिश करनी पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, और सारे जिंदगी की कमाई हमको अंत में सौंपनी पड़ेगी। तो जहां जन्म लिया वहां जन्म लेने वाली आत्मा की जीत हुई या हार हुई? क्या हुआ? जीत हो गई। अब बेहद में ले लो, राधा कृष्ण की आत्माएं हैं, यज्ञ के आदि में उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, अपने जीवन की सारी कमाई ईश्वरी यज्ञ में झोंक दी, लगा दी, सिर्फ कमाई ही नहीं, धन संपत्ति ही नहीं, जो तन के संबंधी थे, संपर्की थे, वो भी यज्ञ में स्वाहा कर दिए। जो तन के संबंधी उनकी बात नहीं माने, जैसे उनके लौकिक बच्चे, उनको 9-2-11 कर दिया, अलग कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने संबंधी, संपर्की सब सच्चाई से स्वाहा किया। और यज्ञ के आदि में राम बाप वाली आत्मा भी थी, उसने भी अर्पण किया, लेकिन वो गरीब था। बाबा कहते हैं जिसके पास 10 रुपया है वो 10 रुपया यज्ञ में अर्पण करे, और जिसके पास 10 लाख है वो 10 लाख अर्पण करे, दोनों का बराबर हिस्सा हो जाएगा या कम ज्यादा होगा? बराबर हो जाएगा। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने भी अर्पण किया, तन मन धन समय संपर्क सब अर्पण किया, परंतु ज्ञान का डोज पूरा बुद्धि को नहीं मिला, इसलिए धोखा दे दिया। जब बंटवारा हुआ दुकान की प्रॉपर्टी का, तो ब्रह्मा बाबा को जो मिल गया, जो दे दिया उसने, सो ब्रह्मा बाबा ने चुपचाप ले लिया, झगड़ा नहीं किया। और राम वाली आत्मा हिसाब करके देना चाहिए था ना, हिसाब क्लियर करके देना चाहिए ना, सारा लिखा पढ़ी करके, वो नहीं दिया। तो सुदामा ने चालाकी की ना, घटियाई का काम किया या बढ़िया काम, खराब काम किया, खराब बढ़िया काम किया, घटिया काम किया। तो राम वाली आत्मा अगले जन्म में आकर के गरीब बननी चाहिए या साहूकार बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए है? पहले जन्म में भी गरीब थी और अगले जन्म में ब्राह्मण होने के बावजूद भी कहां जन्म लिया? गरीब से गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तो ये हिसाब किताब बन जाता है। क्या हिसाब किताब बना? राम सीता वाली आत्माएं जिन्होंने घटिया काम किया, फेल हो गई, उन आत्माओं को अगला जन्म लेकर के सारा जीवन पुरुषार्थ का संघर्ष में बिताना पड़ता है। और ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थी जीवन चैन की बंसी बजा करके बिताया या संघर्ष में बिताया? चैन की बंसी बजा करके बिताया। तो जहां जी वहां जन्म, राम सीता वाली आत्माओं को ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं का रचयिता मां बाप बनना पड़ता है सतयुग में। सारा जीवन संघर्ष करके जो विश्व की बादशाही कमाते हैं वो किसको सौंपनी पड़ती है? राधा कृष्ण जैसे बच्चों को सौंप देनी पड़ती है। वो बच्चे 150 वर्ष राज्य करते हैं और राम सीता वाली आत्मा को क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या सारी दुनिया
मानते हैं?
मानते हैं, मान मान को चाटेंगे बैठ करके क्या? फिर भी
उनका नाम ही उतना बड़ा है।
अरे नाम को चाटेंगे क्या? गायन होगा तो जो गायन है वो चाटा जाएगा, या जो जीवन में खुशी मिलेगी तन से मन से धन से वो काम आएगी। द्वापर युग से भक्ति चलती है, वो भक्ति में बड़ी पूजा होती है।
नहीं बाबा, सत्ययुग में भी दोबारा फिर जन्म लेकर राम सीता आत्मा है, तब सुख पाएगा ना?
क्या सुख पाएगा?
उसको
वो राधा कृष्ण वाले बच्चों का पालन पोषण करेगा,
फिर बाद में दूसरा जन्म लेगा ना?
माँ बाप बनेगा, दास दासी बनेगा फर्स्ट क्लास।
वो तो हो गया,
वो तो हो गया, वो हो गया, वो नहीं मानेंगे। माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं फर्स्ट क्लास,
वो तो ठीक है, बाद में
वो ठीक बात मानो।
दूसरा जन्म में फिर सुख भोगेगा, दूसरा जन्म में सुख भोगेगा ना? दूसरा जन्म
क्या? दूसरे जन्म
फिर दूसरा जन्म तो लेगा ना राम सीता की आत्मा?
हाँ, तो वो नीचे गिरती जाएगी, जैसे राधा कृष्ण की आत्मा नीचे गिरेगी वैसे वो भी नीचे गिरेगी। हाँ, तुम्हें नाम, तुम्हारी आत्मा नाम को चाटना चाहती है या जन्म जन्मांतर सुखी होना चाहती है? आप क्या चाहते हैं? आपको सुख चाहिए जन्म जन्मांतर? बाबा की बात छोड़ दो। आपकी आत्मा जन्म जन्मांतर सुख शांति चाहती है या मान मर्तबा चाहती है? सुख नहीं मिलता है। राम वाली आत्मा द्वापर के आदि से ही विदर्भियों से लड़ती रहती है, संघर्ष करती रहती है। 63 जन्म संघर्ष करना पड़ता है विदर्भियों से।
वो
संस्कार कहाँ पड़ते हैं? वो संघर्ष करने के संस्कार विदर्भियों से, संघर्ष करने के संस्कार कहाँ पड़ते हैं? संगम युग में पड़ते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं, सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है।
नहीं बाबा, राम सीता और यशोदा
सीता में आके राजा रानी बनता है तो
राम सीता
हाँ
उसको मिलता है ना सुख शांति।
हाँ
तभी
जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
शिव का ज्ञान को तो मानना पड़ेगा।
हाँ, शिव के ज्ञान को मानो, यही मानो कि जहाँ जीते वहाँ जन्म ज्ञान है, मान लो। और
राम तो संघर्ष करके ही पुशअप कर रहा है। राम तो संघर्ष करके पुशअप कर रहा है, सीता तो संघर्ष नहीं कर रहा ना।
राम अभी संगम युग में राम की आत्मा संघर्ष करके पुरुषार्थ कर रहा है।
हाँ,
सीता की आत्मा तो कोई संघर्ष नहीं कर रहा है।
अच्छा, जो जो ब्रह्मा कुमारियाँ इंचार्ज बन के बैठी है और जो ब्रह्मा कुमारियाँ असिस्टेंट बन के बैठी है, उनमें ज्यादा दुख कौन झेल रहा है? है कौन झेल रहा है? तो फिर
भले भले
शास्त्रों में उनको ही कथा दिखाई गई है। राजा उत्तानपाद कंपिल में हुए, उनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि थी अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, जो अच्छा लगा सो किया, स्वेच्छाचारिणी। और बड़ी रानी थी सुनीति, नीति नियम पूर्वक चलने वाली, श्रीमत पर चलने वाली। उसने संघर्ष नहीं किया, जंगल में चली गई ध्रुव को लेकर के, और कांटों के जंगल में उसने अपना जीवन बिताया। कहां की बातें हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज वाले रावण संप्रदाय साबित हो गए। रावण संप्रदाय के बीच में रह करके ऐसा पाठ चलता है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ काम करती है। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा, कट पकड़ में आ जाएगी। कौशल्या पार्ट को सेकंड नारायण होते हैं ना?
कोई बोल रहा
है?
कोई बात बोल रहा है?
कैसे
पूछ रहे हैं?
क्यों पूछ रहे हैं? अनुमान से क्यों बात कोई बोलनी चाहिए? कोई प्रूफ है तो बताओ।
पूछ रही हूं।
क्यों पूछ रहे हैं? अनुमान से कोई बात मत पूछिए।
अनुमान नहीं होता।
अनुमान तो है कि कौशल्या वाली आत्मा सेकंड नारायण बनेगी।
कौशल्या
वही कौशल्य आत्मा सेकंड नारायण बनते हैं क्या, ये पूछ रहे
नहीं वार्तालाप में आया है, वार्तालाप में ऐसा है
उन्होंने वार्तालाप में अपने तरीके से बात को गलत ढंग से उठा लिया।
सेकंड नारायण बनता है वार्तालाप में नहीं बोला है?
नहीं
नहीं बोला।
आप क्यों बोल रहे हैं?
बाबा ने वार्ता डिस्कशन में कौशल्य,
अरे ये लोग कहने लगे कि श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाली माता रावण संप्रदाय है। जो श्रीमत के अनुकूल बातें है वो ही करो ना, दूसरी बात क्यों करना। और
बाबा अभी ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा का स्वर शंकर वाली आत्मा के ऊपर सवारी करता है,
है?
ब्रह्मा का स्वर शंकर में सवारी करता है ना?
हाँ जी हाँ जी।
ये लास्ट में शंकर का स्वर ब्रह्मा में सवार करेंगे, अभी शंकर को शरीर देंगे ना वो कैसा सवार करेंगे, शरीर रहेंगे ना वो कैसा सवार करेंगे?
शरीर रहेगा सवारी कैसे करेगा? शरीर रहेगा माने देहवान रहेगा। जब तक राम वाली आत्मा का शरीर का भान है तब तक ब्रह्मा की सोल सवारी कर रही है। जब शरीर का भान पूरा खलास हो जाएगा तो राम वाली आत्मा ऐसी स्टेज में पहुंच करके हाई जंप लगाएगी और बैल के ऊपर सवार हो जाएगी। क्या
हाथ में
पर्स
क्या है?
अष्टदेव सजा नहीं खाते हैं तो उनकी जो समान पुरुषार्थी विजयमाला में अष्टदेवियां हैं वो सजा खाती है क्यों? कोई ने वकालत तो बढ़िया की है कि न? लेकिन वकील ने वकालत करते समय ये भूल गया कि जब ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तो सच्चाई को अष्टदेवों ने पहले माना या अष्टदेवियों ने माना? जब सच्चाई को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, चलने का तो फिर सवाल ही नहीं, तो सजा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? है? खाना पड़ेगा। प्रश्न लिखते हैं नाम नहीं लिखते। अगला प्रश्न है पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, उसे पीयू की वाणी कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो हिंदी लिखना नहीं आता था, सवाल पैदा हुआ तो ब्रह्मा बाबा कैसे लिखते थे? अरे हिंदी में नहीं लिखना आता था, सिंधी में नहीं लिख सकते? जब ब्रह्मा बाबा के लेटर्स मिल रहे हैं वो लेटर्स ये जरूरी है कि हिंदी में लिखे हुए हों?
हिंदी स्क्रिप्ट है, सिंधी में लिखा,
सिंधी भाषा में लिखे हुए लेटर्स मिल रहे हैं। लाल अक्षरों में ब्रह्मा बाबा लिखते थे, नीले अक्षरों में कोई बहन उसका अनुवाद करके भेजती थी, तो कोई जरूरी है कि जो बोली जाती थी वाणी वो ब्रह्मा बाबा हिंदी में ही लिखे? आगे ब्रह्मा बाबा को तो हिंदी लिखना नहीं आता था, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि पीयू की वाणी सिंधी में होगी? साबित होता है, है? ये साबित होता है नहीं, कोई जरूरी नहीं कि प्यू की वाणी सिंधी में चलाई गई हो। बाप आकर के हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी में समझाते हैं, दूसरी भाषा में नहीं बोलते नहीं समझाते। बालाजी ने श्री देवी को शादी करने के लिए कुबेर से कर्जा लिया था, ये बात तो ठीक है, ये गलत है, है? कैसे ठीक है?
काशी नगरी,
हाँ काशी नगरी जो है वो धन संपत्ति की स्वामी कुबेर साबित होती है। धन सफली भूत उसी को कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान धन की बात है, जो ज्ञान धन सिर्फ सुनने सुनाने का ना हो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का हो। सब कहे कि इसने अच्छी ज्ञान की धारणा की है, इतनी बात तो ठीक है कि बालाजी ने श्रीदेवी को शादी करने के लिए कुबेर से कर्जा लिया, क्योंकि बालाजी अपने ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में पुरुष था या स्त्री था, पुरुष था तो दुर्योधन दुशासन रहा होगा या नहीं रहा होगा, है? रहा होगा। तो प्रैक्टिकल ब्राह्मण जो जीवन है, ब्राह्मणों का मुख्य काम है पवित्रता जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, वो तो बालाजी ने धारण नहीं कर पाई, तो किससे कर्जा लिया? है? कुबेर से कर्जा लिया। जैसे आजकल होता है ना, पति पत्नी जो होते हैं, पति अपनी जो कमाई करता है उस कमाई में पत्नी का आधा हिस्सा होता है, लेकिन अगर कोई पति अपनी पत्नी को एक पैसा भी न दे, सारा अपनी मुट्ठी में रखे, तो पति के ऊपर कर्जा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? है? कर्जा चढ़ेगा। तो ऐसे ही जैसे कि सतयुग का आठवां नारायण जो धारणा करनी चाहिए ज्ञान की, मनन चिंतन मंथन करने की, वो धारणा उसने नहीं की, हवाई जहाजों में घूमता रहा, बड़े बड़े सेंटर्स में जाकर के जोनल इंचार्ज के महलों में जाकर के मान मर्तबा लेता रहा ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उसके ऊपर राम वाली आत्मा का कर्जा चढ़ा या नहीं चढ़ा?
चढ़ा।
ऐसे ही बालाजी वाला जो पुरुषार्थी ब्राह्मण है, वो पुरुष शरीर होने के कारण पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में उतना धारण नहीं कर सकता जितना कुबेर करता है। दूसरे नंबर का अष्ट देव तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है कि नहीं, सहयोगी तो है एक दूसरे के कार्य में। काशी नगरी में नागरिकों की प्रजा का पालन होता है कि नहीं होता है, उस पालना के कार्य में काशी राज और काशी नगरी दोनों ही सहयोगी हैं बराबर के या नहीं सहयोगी है? दोनों ही हकदार हैं, लेकिन एक अपना फर्ज पक्का करता है और दूसरा पुरुष चोला होने के कारण अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाता। तो कर्जा चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? कर्जा चढ़ गया। कर्जा को कलयुग के अंत में वापस देंगे, ऐसा कुछ है भक्ति मार्ग में? ऐसा मानते हैं कि कलयुग में जाकर के बालाजी ने कर्जा चुकतु किया है, तो कलयुग के अंत में वापस देंगे, तब तक ब्याज देंगे, ब्याज भरभर के देना पड़े। इसका मतलब क्या है? है इसका मतलब नहीं समझ में आया? अरे कोई को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है?
जब नया संगठन कर रहा है,
चल रहा है नया संगठन काशी नगरी में, हाँ
वो अच्छेदेव में पहले वाला आत्मा
बालाजी हाँ
वो नया संगठन को संभालने के लिए वो पैसा देना पड़ता है।
माना उसको दर दर जाकर के ठिब्बे खाने पड़ रहे हैं, भांति भांति के मिनी मदनों के ब्राह्मणों के संगठन में कथा करनी पड़ रही है। ब्राह्मण का काम क्या होता है? कथा करना। कथा करने के बाद जो दक्षिणा पूंजा मिलती है, कटिया पूंजा वो गले में लटका के ब्राह्मण ले जाके काशी नगरी को क्या करता है? सौंप देता है। तो ब्याज भरना पड़ रहा है कि नहीं भरना पड़ रहा है? है
भरना पड़ रहा
है। जगदम्बा को तो नहीं भरता था, भरता था आराम से एक जगह बैठ के पूरा राज्य करता था। तो ये तो ठीक बात है, हल हो गया कि नहीं? किसने किया था बताएगा नहीं नाम। इसमें तो नाम भी बता दिया, भवानी माता है, चोर चकार नहीं है कि पीछे से तलवार मार के भाग जाए, है सामने आके वार करती है। त्रेता अंत में अर्ध विनाश में अकाले मृत्यु क्यों होता है? उनके पास इसका जवाब है?
आत्मा 16 कला से 8 कला बन जाता है। आत्मा स्टेज 16 कला से 8 कला बन जाता है,
तो क्या हुआ?
इसलिए प्रकृति भी तमो बना
है,
प्रकृति का स्टेज भी डाउन होता है ना।
अरे 10 करोड़ जो त्रेता के अंत में ब्राह्मण देवताएं हैं, वो आठ कला वाले बन जाते हैं, आठ कला वाले बन जाते हैं या आठ कलाओं से नीचे बन जाते हैं?
है तोड़ा के लिए, तोड़ा सच्चे के लिए आठ है,
आठ कलाओं से भी नीचे हो जाते हैं, तो तराजू का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो आधा विनाश भूकंप, भूकंप हो जाता है। हाँ बोला, अकाले मृत्यु क्यों होता है? वो आत्माए क्या पाप किया है? त्रेता के अंत में पाप का ही पता नहीं चला। अरे वो त्रेता के अंत में वो देवात्माए पापी बनती है कि नहीं? क्या पापी बनती है? हाँ वाम मार्ग में चली जाती है, देवताएं उल्टे रास्ते में चली जाती है। जो सीधा रास्ता था श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने का, वो टेढ़ा रास्ता पकड़ लेते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना शुरू कर देते हैं। देवताएं भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि त्रेता के अंत में वहां तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो त्रेता के अंत की जो तीन सीढ़ियां कटी हुई दिखाई गई है वो कटी हुई क्यों दिखाई गई? उनके अधिपति कोई होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, कौन होते हैं? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। वो कटी हुई स्वर्ग की सीढ़ियों के निमित्त बन पड़ते हैं। स्वर्ग का सुख होने के कारण कट हो जाता है। साहूकार दिखाई पड़ रहा है, टीबी के पूजा प्रजापिता वाली आत्मा हर धर्म की राज्य की स्थापना के निमित्त बनती है। ये बात समझ में आ रही है? वो राज्य की स्थापना सिर्फ भारत की है या सारे विश्व की है? जैसे द्वापर शुरू होता है तो द्वापर के आदि में इस्लाम धर्म की आत्मा आती है। इस्लाम धर्म का इब्राहिम आवेगा, इस्लाम धर्म की स्थापना करेगा, विचार फैलावेगा इंद्रियों का। भाई बहन में शादियां होती थी इस्लामियों में, तो ढेर की ढेर प्रजा पैदा होने लगी। 200, 100, 200, 300 साल में इस्लामियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या थोड़ी बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो वो ज्यादा संख्या वाले भ्रष्टाचारी विधर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारतवासियों को दुख देंगे या सुख देंगे? दुख देने के निमित्त बन पड़ते हैं। तब राम वाली आत्मा और राम के सहयोगी सूर्यवंशी आत्माएं उन विचार फैलाने वालों को मुकाबला करती है, शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमयुग दुनिया में शूटिंग होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में दृष्टि का विविचार किसने फैलाया? वही इस्लाम धर्म की आत्माओं ने दृष्टि का विविचार फैलाया और सक्रिय विरोध किसने किया? राम वाली आत्मा और राम के जो भी सहयोगी बनते हैं वो उस बात का सक्रिय विरोध करते हैं विविचार। तो द्वापर के आदि में 300-400 वर्षों के बाद उन इस्लामियों से संघर्ष होता है और संघर्ष के टाइम पर वो चोर चकार जो विविचार फैलाते हैं वो अरब देशों के जंगलों की तरफ भाग खड़े होते हैं। तो भगाने के निमित्त बनने के लिए कोई सशक्त संगठन तैयार होता है या ऐसे ही भाग जाते हैं? संगठन तैयार होता है। भर्ती थोड़ी देखभाल की जाती है योगी तो है 6-8 दिन रह क्यों नहीं सकते? परमिशन लेनी पड़ती है। और टाइम हो गया, सबको देर हो गई। Thank you.